पिंकेश कुमार की आवाज़ में, बीए सेकंड ईयर, राजनीति विज्ञान, पेपर थर्ड, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में, अमेरिकी व्यवस्थापिका, कांग्रेस। अमेरिकी व्यवस्थापिका द्विसदनीय है। अब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर लगभग एकमत थे। अमेरिका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था और परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नितांत असंतोषजनक तथा असफल सिद्ध हुई थी। परिसंघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक था। अंततः इस बात पर तो सहमति थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, लेकिन इस बात पर तीव्र विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण का आधार क्या हो। अंत में संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों के बीच इस संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उच्च सदन सीनेट के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए, अर्थात छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व हो। कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। लेकिन विभाग में कांग्रेस को न केवल विधायी वरन प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। कांग्रेस की कार्य और शक्तियां निम्नांकित हैं। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त है, असीमित नहीं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4थे अध्याय में दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की हैं। पहला, प्रदत्त, निहित तथा संवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण, नाप तौल का स्तर निर्धारित करने, डाक तथा तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी और स्थल सेना तथा जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कारपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली का बेचना, सैनिक तथा जल सेना अकादमी स्थापित करना शामिल है। सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर धन खर्च करना भी सम्मिलित है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना तथा व्यवस्था, बैंक और कारपोरेशन की स्थापना, लोगों के हित के लिए संपत्ति बनाना तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना समवर्ती सूची में शामिल है। दूसरा, चुनाव संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सुनिश्चित प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों का चुनाव तथा उसकी योग्यताओं का निर्णय करता है। तीसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतया सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। चौथा, प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण है। कार्यपालिका विभागों में रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इनके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। पांचवा, जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस के जांच पड़ताल करने के इस कार्य का महत्व बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। छठा, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश प्रदान किया है। सातवां, दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदन सदस्य में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। आठवां, वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। कांग्रेस अपनी शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। नवा, न्यायिक कार्य। संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर वह राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारी को महाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है। सीनेट, अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट की संख्या सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सीनेट के सदस्यों के लिए योग्यताएं। जो व्यक्ति सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं उनमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता हो, कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। सदस्यों का चुनाव। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो यह व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे। कुछ राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों में आपसी झगड़े और मतभेद इतने उग्र थे कि वे अनेक बार किसी भी सदस्य को सीनेट के लिए नहीं चुन सके। अंततः सीनेट में कई राज्यों के स्थान रिक्त पड़े रहे। इसके अतिरिक्त सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। विशेषतया अमेरिकी संघ के छोटे राज्यों में यह स्थिति देखी गई। अतः अब जनता में यह विचार बल पकड़ने लगा कि सीनेट के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। इन स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया है और अब यह जनता की वैसे ही प्रतिनिधि बन गई है जैसा कि प्रतिनिधि सभा। अवधि। सीनेट एक अस्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर एक नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। गणपूर्ति। सीनेट की बैठक के लिए कुछ सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। अधिवेशन। 1933 में पारित किए गए 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई में समाप्त होता है, किंतु युद्ध या अन्य संकट की स्थिति में अधिक समय भी चल सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के सदनों में विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। सभापति तथा अन्य पदाधिकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उनके द्वारा सीनेट की कार्यवाही का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता और पक्ष विपक्ष के बराबर मताने अर्थात टाई पड़ने की स्थिति में ही अपने मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट की कार्यवाही के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिकी राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसी अवसर समानता नहीं आते जिनमें सभापति की व्यवस्था स्थापित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। सभापति के द्वारा सदस्यों को उसी क्रम से बोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है जिस क्रम में वह बोलने के लिए उठे हों। सीनेट का अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। संयम अध्यक्ष सदन का सदस्य होने के नाते उसे सदन की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स और सदन का सदन या लिपिक आदि। सीनेट की शक्तियां और कार्य। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया था। उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक संस्था होनी चाहिए, जिससे इन दोनों में से कोई भी संस्था निरंकुशता की प्रवृत्ति को न अपना सके। सीनेट की रचना एक ऐसी संस्था के रूप में ही की गई है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, सीनेट शासन एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्रात्मक असावधानी और धृष्टता पर और दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है। सीनेट की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति ही प्राप्त होती है। लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में स्थिति ऐसी नहीं है। मुंडो के शब्दों में, वह कांग्रेस की एक समानपति शाखा है, अधीन नहीं है और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय कानून निर्माण के कार्य में साझेदार है। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और वित्त विधेयकों के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। साधारण विधेयकों और संवैधानिक विधेयकों, दोनों ही प्रकार के विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर लें। वित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य कुछ उच्च स्थिति प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान यह भी करता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। सीनेट ने वित्तीय विधेयक के संशोधन करने के अधिकार का अर्थ यह लगाया है कि वह उसके पास भेजे गए बजट या वित्त विधेयक में शीर्षक के अतिरिक्त अन्य सब कुछ परिवर्तित कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक राजस्व विधेयक में सीनेट ने 847 संशोधन प्रस्तावित किए थे। मुंडो के शब्द में, सीनेट वह कार्य करने लगी है जिसे संविधान नहीं चाहता था कि वह करो। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट की स्थिति सैद्धांतिक दृष्टि से ही गौण है, व्यवहार में नहीं। इसके अतिरिक्त व्यवहार में एक बात ने तीनों ही प्रकार के विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा से उच्च स्थिति प्रदान कर दी है। यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो वह विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर बराबर ही संख्या, प्राय 3-3 सदस्य होते हैं और सम्मेलन समिति दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है। व्यवहार में सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं। अब समझौता बहुत कुछ सीमा तक उसी रूप में सम्मान होता है जिस रूप में सीनेट चाहती है। दूसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सीनेट को न केवल व्यवस्थापन वरन प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बढ़कर हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती हैं जबकि सीनेट के द्वारा उसे साधारण बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च सैनिक अधिकारी आदि। दूसरे प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में ही जाती है, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्टमास्टरों के कुछ वर्ग, कुछ न्यायवादी तथा मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार कर ली जाती है कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करे। वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेट या शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के सीनेट सदस्यों से परामर्श के आधार पर ही नियुक्तियां करे। जब जब राष्ट्रपति ने सीनेट या शिष्टता की इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया। सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में कुछ भाग प्राप्त कर लिया है। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशियों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उन्हें दो तिहाई बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और सीनेट अपनी शक्ति के आधार पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में भागीदार बन गई है। राष्ट्रपति की वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति भी अपनी सीमाओं से परिचित है और वर्तमान समय में उसके द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की परराष्ट्र समिति के निकट संपर्क में रहते हुए ही किया जाता है। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। तीसरी अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संबंध में प्राप्त है। संविधान के द्वारा सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है। और सीनेट के इन अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने की यही एकमात्र साधन है। 1929-30 के आर्थिक संकट के पूर्व और संकट काल में वॉल स्ट्रीट के द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट तरीके सीनेट के अन्वेषण के परिणाम स्वरूप ही प्रकाश में आए। अभी हाल के वर्षों में सीनेट ने वाटरगेट कांड के सत्यों को प्रकाश में लाकर सारा विश्व का ध्यान अपनी शक्ति के महत्व को आकर्षित किया है। वस्तुतः सीनेट द्वारा किए गए कुछ अन्वेषणों ने महती सेवा की है। इसी आधार पर लास्की लिखते हैं कि अमेरिकी अन्वेषण समिति की व्यवस्था में ब्रिटिश रॉयल कमीशन तथा लोक सदन में प्रश्नकाल दोनों के गुण समर्पित हैं। सीनेट की एक शक्ति का दूषित पक्ष यह है कि यह इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। चौथा न्यायिक शक्ति। सीनेट को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और शपथ दिलाना आदि करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की गई। इनमें 4 बार महाभियोग पारित किया गया। ब्राइस ने महाभियोग को कांग्रेस के शस्त्रागारों का सबसे भारी शस्त्र कहा है। पांचवा अन्य शक्तियां। सीनेट को अन्य कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष दशा में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों का निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। सीनेट की शक्तियों को उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों के व्यवस्थापकों के द्वितीय सदनों को इसकी तुलना किया जाए तो इसे विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। सीनेट की महत्ता और उसके कारण। सीनेट की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद यह एक तथ्य है कि सीनेट विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। प्रोफेसर लास्की के कथनानुसार सीनेट अमेरिकी शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। प्रोफेसर लिंडले रोजर्स का कहना है, सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। प्रजातंत्र के अधिकारी विद्वान लॉर्ड ब्राइस, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन तथा फ्रेंच लेखक रॉकवेल ने भी सीनेट की बड़ी प्रशंसा की है। सीनेट की महत्ता के कारणों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। संविधान की भाषा से यह नितांत स्पष्ट है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। मुंडो के अनुसार संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात कही गई है, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। संविधान निर्माताओं में से ही अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते थे। संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर ही अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्राप्त है। दूसरा, सीनेट की विशेष शक्तियां। संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो विश्व की किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है, और इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है, और यह बात न केवल साधारण विधेयकों वरन वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी सत्य है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण उनके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसी तथ्य के कारण इसने सर्वाधिक योग्य और राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तीसरा, मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। यदि अमेरिका में ब्रिटेन की ही भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता और केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर देती। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, अतः कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई है। चौथा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ब्रिटेन की लोकसभा, भारत की राज्यसभा, फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों का या तो मनोनयन होता है अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और यह पद्धति लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। मूल अमेरिकी संविधान में सीनेट सदस्यों के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 में संविधान में 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों में जिन तत्वों के आधार पर द्वितीय सदन का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है, यह बात अमेरिकी राजनीति में नहीं रही और सीनेट के लोकतंत्रीय आधार ने उसे प्रजातंत्र का प्रतीक बना दिया है। पांचवा, सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। सीनेट का स्थायित्व और सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल भी सीनेट की शक्ति में वृद्धि का रहस्य है। सीनेट इस अर्थ में स्थायी है कि वह न तो पूरी सीनेट कभी भंग होगी और न ही सीनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल नए सिरे से शुरू होता है। सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है और इस 6 वर्ष के कार्यकाल का महत्व इस दृष्टि से है कि उनकी तुलना में प्रतिनिधि सभा कार्यकाल 2 वर्ष ही है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जहां एक बार निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं, वहीं सीनेट सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक स्वतंत्रता और निर्भयता के साथ राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं। पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण अनेक सदस्य 18, 24 और कभी कभी 30 वर्ष से भी अधिक समय तक इसके सदस्य रहते हैं और अपने इस दीर्घ अनुभव के आधार पर ये सीनेटर और सीनेट अमेरिकी राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। छठा, सीनेट का लघु आकार। सीनेट के लघु आकार के कदम भी उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ी है। सीनेट की कुल संख्या लगभग 100 है और प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में परस्पर घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद कर पाते हैं। सीनेट का कारण इतना अवश्य है कि उसके विचारों में विभिन्नता रहती है और इतना अधिक नहीं है कि उसकी विधायी विचार विमर्शों और कार्यवाहियों में सजीवता न रह सके। लॉर्ड ब्राइस का कथन है, इसका लघु आकार योग्य तथा होनहार व्यक्तियों को योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। सातवां, सीनेट सदस्यों के संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर एक। वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर एक की भावना होती है, लेकिन सीनेट के सदस्य अपने संस्था के प्रति जितना सम्मान भाव रखते हैं उनमें परस्पर जितना एक है उतना अन्यत्र नहीं है। जब किसी राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के प्रति शिष्टाचार या सीनेट की अन्य किसी सुनिश्चित परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो सीनेट के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को भूलकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं। 1938 में जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सीनेट के प्रति शिष्टाचार की अवज्ञा का प्रयत्न किया तो पूरी सीनेट ने, जिसमें राष्ट्रपति दल के सदस्य भी सम्मिलित थे, राष्ट्रपति का डटकर और सफल विरोध किया। आठवां, सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। संस्था की महत्ता उसके सदस्यों पर निर्भर करती है और सीनेट को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का अंतिम किंतु एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्यों की गुणात्मक श्रेष्ठता है। सीनेट कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति की सहभागी है, इस प्रकार शासन तंत्र में उसका स्थान बड़े महत्व का हो गया है। परिणाम स्वरूप वे राजनीतिक नेता जो अपने को देश के राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं अधिकांश सीनेट की ओर आकर्षित होते हैं। सीनेट के सदस्यों के अधिक योग्य होने के कारण जब सीनेट लोगों को अच्छी सेवा करती है तो सीनेट के सम्मान और उसकी महत्ता में वृद्धि होती है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में जो कुछ होता है उसकी ओर समाज पत्रों का ध्यान भी नहीं जाता, परंतु सीनेट सदस्यों के वक्तव्य समाचार पत्रों में शीर्ष स्थान पाते हैं। अब द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की सीनेट से तुलना। व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के पक्ष और विपक्ष के विभिन्न तर्क दिए जाने के बाद सामान्य रूप से इस विचार को अपना लिया गया है कि प्रथम सदन की जल्दबाजी और विशेष स्थिति में मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए द्वितीय सदन का अस्तित्व आवश्यक एवं उपयोगी है। यही कारण है कि केवल कुछ छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की ही पाई जाती है। ब्रिटेन की संसद के दूसरे सदन को लॉर्ड सभा और अमेरिका कांग्रेस के दूसरे सदन को सीनेट का नाम प्राप्त है। ब्रिटेन के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा और अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट के बीच प्रमुख तुलना रचना और शक्तियों के आधार पर की जा सकती है। रचना की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन। व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के पक्ष और विपक्ष एक राजनीतिक संस्था के कार्यों और शक्तियों पर उसकी संरचना या संगठन का पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः तुलनात्मक अध्ययन के प्रसंग में रचना या संगठन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। सीनेट और लॉर्ड सभा के संगठन में तीन प्रमुख अंतर है। प्रथम, सीनेट की सदस्य संख्या 100 है किंतु लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या वर्तमान में लगभग 1200 है। लगभग 1200 सदस्य वाली लॉर्ड सभा न तो ठीक ढंग से कार्य कर सकती है न ही उससे ऐसी आशा की जा सकती है। लेकिन सीनेट एक छोटी संस्था होने के कारण एक सुसंगठित इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। सीनेट के सदस्यों में परस्पर ऐक्य है जबकि लॉर्ड सभा के सदस्य परस्पर अपरिचित भी हो सकते हैं। द्वितीय, लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य वंश परंपरा या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे जनप्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते और बिना किसी प्रयत्न के मिली हुई सदस्यता उनके लिए तिरस्कार की वस्तु बनकर रह गई है। सीनियर सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की गई सदस्यता को वे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सत्य रूप में जनप्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। तृतीय, लॉर्ड सभा के सदस्यों को सदस्यता आजीवन प्राप्त होती है। सीनेट की सदस्यता का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनेक सदस्य बार बार चुनकर जाते हैं, लंबे समय तक इनके सदस्य रहते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य के चुने जाने की व्यवस्था होने के कारण सीनेट सदा भी राष्ट्रीय जनमत का सही प्रतिबिंब बनी रहती है। लेकिन आजीवन सदस्यता की व्यवस्था होने के कारण लॉर्ड सभा राष्ट्रीय जनमत का सही प्रतिबिंब नहीं होती। राष्ट्रीय जनमत का प्रतिबिंब होने के कारण भी सीनेट को अधिक सम्मान की स्थिति और शक्ति प्राप्त है। कार्यों व संगठन, कार्यों और शक्तियों की दृष्टि में तुलना। यदि ब्रिटिश लॉर्ड सभा के कार्यों और शक्तियों की अमेरिकी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन सीनेट से तुलना की जाए तो नितांत स्पष्ट होता जाता है कि लॉर्ड सभा जितनी निर्बल है सीनेट उतनी ही अधिक शक्तिशाली। कार्यों और शक्तियों की दृष्टि से लॉर्ड सभा और सीनेट की तुलना निम्न रूप में की जाती है। विधायी क्षेत्र में और वित्तीय विधेयक के संबंध में अमेरिकी सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के समान है। और वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा या सीनेट के दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकते हैं और जब तक दोनों सदनों द्वारा इन्हें न पारित किया जाए ये कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। दोनों सदनों के परस्पर असहमत होने की स्थिति में दोनों सदनों के समान संख्या में सदस्यों की सम्मेलन समिति की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार वैधानिक दृष्टि में दोनों सदनों की शक्ति समान है, लेकिन व्यवहार में अमेरिकी राजनीति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की अपेक्षा सीनेट के सदस्यों को अधिक प्रभाव प्राप्त होने के कारण सम्मेलन समिति में सीनेट का ही बात अधिकांशतः मान होती है। इंग्लैंड में यद्यपि अवित्तीय विधेयक लोकसभा या लॉर्ड सभा किसी में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा को केवल यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन से असहमत होने पर अवित्तीय विधेयक को 1 वर्ष तक रोके रख सके। इसी प्रकार अवित्तीय विधेयकों के संबंध में अमेरिकी सीनेट को पूर्ण निषेध अधिकार प्राप्त है, जबकि लॉर्ड सभा को 1 वर्ष के लिए विलंबकारी निषेधाधिकार सस्पेंशन वीटो भी प्राप्त है। वित्तीय क्षेत्र में वित्त विधेयक ब्रिटिश लॉर्ड सभा या अमेरिकी सीनेट दोनों में ही प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, लेकिन इस संबंध में भी लॉर्ड सभा की स्थिति सीनेट की तुलना में बहुत निर्बल है। सीनेट वित्त विधेयक में सभी प्रकार के संशोधन करने में सक्षम है और वित्त विधेयक कांग्रेस से तभी पारित समझा जाता है जबकि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों इसे स्वीकार कर ले। लेकिन ब्रिटेन में लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोके रखने का ही कार्य कर सकती है। 1 माह का समय बीत जाने पर लोक सदन के द्वारा लॉर्ड सभा की सहमति के बिना ही वित्त विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। कार्यपालिका के क्षेत्र में ब्रिटिश लॉर्ड सभा के द्वारा कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मंत्रिमंडल की आलोचना की जा सकती है, लेकिन इससे अधिक लॉर्ड सभा कुछ नहीं कर सकती। मंत्रिमंडल लोक सदन के ही प्रति उत्तरदायी होता है, लॉर्ड सभा के प्रति नहीं। लेकिन अमेरिकी सीनेट को कार्यपालिका के क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली शक्तियां प्राप्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संधियों पर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है और सीनेट अपनी जांच समितियों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों के कार्यों की जांच भी कर सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में भी सीनेट की तुलना में लोअर सभा बहुत निर्मल है। लोअर सभा कार्यपालिका को केवल प्रभावित ही कर सकती है और वह भी केवल कुछ सीमा तक, लेकिन सीनेट अमेरिकी संघ की कार्यपालिका को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करती है। न्यायिक क्षेत्र में ब्रिटिश लोअर सभा और अमेरिकी सीनेट दोनों के ही द्वारा महाभियोग की जांच करने का कार्य किया जाता है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में एक दृष्टि से ब्रिटिश लोअर सभा अमेरिकी सीनेट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटिश लोअर सभा की न्यायिक समिति के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य किया जा सकता है, लेकिन अमेरिकी सीनेट को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार न्यायिक क्षेत्र में लोअर सभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कानून निर्माण, वित्त और कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की स्थिति लोअर सभा से बहुत उच्च है। रचना और शक्तियों की दृष्टि से उपयुक्त अंतर के अतिरिक्त इन दोनों सदनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यवहारिक राजनीति से भी की दृष्टि से है। लोअर सभा के सदस्य अपने पद, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रति जितने अधिक उदासीन हैं, अमेरिकी सीनेट के सदस्य उतने ही अधिक सक्रिय और जागरूक। लोअर सभा के अधिकांश सदस्य अपनी सदस्यता को बोझ की भांति धोते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक अपने आप को इस सदन की सदस्यता से मुक्त कर लेते हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट राजनीतिक महत्वाकांक्षा का केंद्र है। अमेरिका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित होते हैं। व्यवहारिक राजनीति के इस तथ्य ने अमेरिकी सीनेट को विश्व के अन्य किसी भी देश की द्वितीय सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना दिया है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में आज सीनेट को वही स्थिति प्राप्त है जो स्थिति लॉर्ड सभा को ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में 18वीं सदी में प्राप्त थी। स्टैंडर्ड हेराल्ड के शब्दों में कहा जा सकता, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट आधुनिक विश्व का सबसे शक्तिशाली और ब्रिटेन की लॉर्ड सभा सबसे अधिक निर्बल द्वितीय सदन है। प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय स्थान प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधि सभा का गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होने के कारण इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वह उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयॉर्क राज्य से 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अलास्का, डेलावेयर, नेवादा और व्योमिंग राज्यों में से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रतिनिधि सभा की रचना, प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। अब 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या अस्थायी रूप से 435 निश्चित की गई है। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या के निरंतर वृद्धि होने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में की गई यह व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों न हो। सदस्यों के लिए योग्यताएं निम्नलिखित हैं, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त अमेरिका का नागरिक हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक पदाधिकारी या सैनिक पदाधिकारी न हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। इसे स्थानीयता का नियम, लोकेलिटी रूल कहते हैं। प्रतिनिधि सभा का चुनाव, प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1920 में किए गए संविधान के 19वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। 1964-65 में नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित करते हुए अशिक्षित हविष्यों को भी मताधिकार प्राप्त कर दिया गया। इसी प्रकार मताधिकार के संबंध में रंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर लिए गए हैं। मतदाता की आयु के संबंध में विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवस्था की गई है। जॉर्जिया और केंटकी में यह 18 वर्ष, अलास्का में 19 वर्ष, हवाई में 20 वर्ष, शेष राज्यों में 21 वर्ष रखी गई है। मतदाता बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह विधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। पागलों और दिवालियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। कार्यकाल, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के वेतन भत्ते विशेषाधिकार और नियुक्तियां वही हैं जो सीनेट सदस्यों की हैं। गण पुनर्नियुक्ति के संबंध में भी सीनेट के समान यही व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि की सभा की बैठकें तभी वैध समझी जाएंगी जबकि सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत उपस्थित हो। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और यह पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएं, तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को $62,500 वार्षिक वेतन तथा 10,000 भत्ते के रूप में मिलता है। स्पीकर का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 1(2) में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने कॉकस अर्थात अंतरंग सम्मेलन में कर लेता है, फिर भी सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कानूनी कार्यवाही की जाती है। स्पीकर साधारणतया कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, किंतु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उसके निर्वाचन में सहायक सिद्ध होती है। ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर का चुनाव प्रायः सर्वसम्मति से होता है और वहाँ एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, परंतु संयुक्त राज्य में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं वरन बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अब यह परंपरा अवश्य स्थापित हो गई है कि यदि प्रतिनिधि सभा में पुनः उसी दल का बहुमत हो जाए तो पूर्वगामी सभा का स्पीकर ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। स्पीकर के चुनाव की पद्धति को दृष्टि में रखते हुए ऑग तथा रे ने लिखा है, अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास इंग्लैंड से बहुत भिन्न रूप में हुआ और वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं है। स्पीकर की शक्तियों व कार्य। स्पीकर की शक्तियों का उल्लेख निम्न रूप में किया जा सकता है। पहला, सदन की अध्यक्षता। स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के होने के नाते वह देखता है कि सदन का कोरम पूरा है अथवा नहीं, और कोरम पूरा होने पर वह पिछली बैठक के कार्य विवरण को पढ़ने का आदेश देता है। इसके बाद वह उस दिन की कार्यवाही की घोषणा करता है। वह प्रस्तावों और विधेयकों को सदन के समक्ष रखे जाने की अनुमति देता है। वाद विवाद के पश्चात किसी भी प्रस्ताव या विषय पर मत लेना व सदन के निर्णय को घोषित करना उसी का कार्य है। वह मतदान का अधिकार रखता है, परंतु साधारणतया वह तभी मतदान करता है जबकि किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर बराबर मत हो। 2 सदस्यों को बोलने की अनुमति देना। कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में भाषण नहीं कर सकता। भाषणों के क्रम को निर्धारित करना उसी का काम है। 1910 की क्रांति ने अध्यक्ष की शक्ति पर कुछ सीमाएं अवश्य लगा दी हैं। अब उसके लिए आवश्यक हो गया है कि विपक्षी दल को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। फिर भी स्पीकर इस शक्ति का प्रयोग इस ढंग से करता है कि उसके दल को ज्यादा लाभ पहुंचे। जब कई सदस्य एक साथ खड़े हो जाएं तो स्पीकर यह घोषणा करता है कि कौन व्यक्ति बोलेगा। इस प्रकार वह अपने दल के लोगों को बोलने का ज्यादा मौका दे सकता है। 3, अनुशासन व सदन के गौरव की रक्षा। अध्यक्ष सदन की प्रतिष्ठा का रक्षक है। शांति व्यवस्था व सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए वह निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करता है। 1, वह दर्शक गैलरी को खाली करवा सकता है। 2, सदस्यों को चेतावनी दे सकता है कि वे आवेश में न आएं और एक दूसरे के प्रति शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। 3, सदस्यों को यह आदेश देता है कि वे अध्यक्ष के प्रति आदर भाव प्रकट करें। तथा 4, अव्यवस्था उत्पन्न होने पर सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। 4, अधिकार, सदन के नियमों की व्याख्या और उन्हें लागू करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है। यदि नियम के विषय में कोई अस्पष्टता या मतभेद हो तो स्पीकर अपना निर्णय दे सकता है। उदाहरण के लिए टॉमस रीड ने एक बार यह निर्णय दिया कि सभा का कोरम इस बात पर निर्भर करता है कि सदन में कितने सदस्य उपस्थित हैं, इस बात पर नहीं कि मतदान में कितने लोग हिस्सा लेते हैं। वास्तव में कई प्रभावशाली स्पीकरों के नियमों के संबंध में स्वविवेक का खुलकर इस्तेमाल किया है। अपने जोरदार व्यक्तित्व के कारण वे अपनी बात मनवा सकने में सफल रहे। 5, सदन द्वारा पारित विधेयकों या प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना। अध्यक्ष सदन द्वारा प्रस्तावित सभी विधेयकों, प्रस्तावों, आदेशों, प्रलेखों और वारंटों पर हस्ताक्षर करता है। अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही इन प्रस्तावों और आदेशों की वैधता की स्थिति प्राप्त होती है। वह सदन के निर्णयों को उचित अधिकारियों तक पहुंचाता है ताकि अधिकारीगण उन्हें लागू कर सकें। इसके अतिरिक्त वह अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वह सदन या उसकी किसी समिति के लिए आवश्यक सूचना या जानकारी जुटाए। 6, समितियों से संबंधित शक्तियां। 1911 तक स्पीकर नियम समिति का अध्यक्ष हुआ करता था और इस आधार पर उसे कानून निर्माण में समस्त कार्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली थी। अब ऐसा नहीं है, परंतु सदन की विशेष समितियों के गठन में वह आजकल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह विवाद उत्पन्न हो जाए कि अमुक विधेयक कौन सी स्थायी समिति के पास जाएगा तो इसका निर्णय स्पीकर ही करता है। 7, पार्टी नेता के रूप में स्पीकर का स्थान। स्पीकर एक निष्पक्ष अध्यक्ष के नाते कार्य नहीं करता और वह सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों में पार्टी का आदमी होता है। अपने दल में उसका प्रमुख स्थान होता है, अन्यथा वह इस पद पर आसीन हो ही नहीं सकता। जिन दिनों राष्ट्रपति उसी के दल का कोई व्यक्ति होता है, उन दिनों तो वह विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति से काफी विचार विमर्श करता है। प्रायः बहुमत दल के नेता उससे सलाह लेते रहते हैं। विधेयकों के कुशल संचालन तथा कानून निर्माण में वह आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी स्पीकर की ब्रिटिश स्पीकर से तुलना। स्पीकर के पद का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। स्पीकर शब्द का उच्चारण करते ही हमारे सामने इंग्लैंड के इतिहास की वे घटनाएं जीवित हो जाती हैं जो इस पद से संबंधित हैं। परंतु नाम की समानता के बावजूद अमेरिकी स्पीकर और ब्रिटिश स्पीकर की शक्तियों में काफी अंतर है जो निम्नांकित है। पहला, कॉमन सभा का स्पीकर दलगत व्यक्ति नहीं होता, जबकि अमेरिका में स्पीकर का पद दलगत बन गया है। इंग्लैंड में बड़े लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि जैसे ही एक व्यक्ति स्पीकर बनता है, वह अपने को सक्रिय राजनीति से पूर्णतया अलग कर लेता है। वह न तो दल की किसी बैठक में भाग लेता है, न पार्टी के क्लब या कार्यालय में जाता है और न ही पार्टी के समाचार पत्रों को ही मांगता है। अमेरिका के स्पीकर की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। उसका चुनाव दलगत आधार पर होता है और चुनाव के बाद भी वह अपनी पार्टी का सक्रिय नेता बना रहता है। वह अपनी समस्त शक्ति और सत्ता का उपयोग अपनी पार्टी के हितों के अभिवृद्धि के लिए करता है। किसी भी राजनीतिक दल में राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ी हैसियत उसी की समझी जाती है। दल के नेता बराबर उससे विचार विमर्श करते हैं। अमेरिकी स्पीकर की इस दौलिया स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए फाइनर ने लिखा है, स्पीकर बनने पर वह अपना राजनीतिक दायित्व छोड़ नहीं देता, वरन और अधिक राजनीतिक होने के लिए ही वह अधिक अध्यक्ष बनता है। दूसरा, ब्रिटिश स्पीकर एक मुख्य न्यायाधिपति जैसा है, जबकि अमेरिकी स्पीकर विधि निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। ब्रिटेन का स्पीकर कॉमन सभा की बहस में भाग नहीं लेता। किसी प्रस्ताव पर टाई पड़ने अर्थात पक्ष और विपक्ष में मत बराबर आने की स्थिति में, यद्यपि उसे निर्णायक मत के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके द्वारा अपने इस मत का प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाता है कि अंतिम निर्णय सदन के ही द्वारा हो। कॉमन सभा के अध्यक्ष के रूप में उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण नहीं होता। सदन के नियमों को वह निष्पक्ष रीति से लागू करता है और किसी को यह कहने का मौका नहीं देता कि वह सत्ताधारी दल का साथ दे रहा है। इसके विपरीत अमेरिका में स्पीकर सभी राजनीतिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करता है और बाकायदा सदन की बहस में हिस्सा लेता है तथा अन्य सदस्यों की तरह मतदान भी करता है। एक बार स्पीकर हैनली नी ने मतदान के समय सर्वप्रथम अपना नाम पुकारा था, जिससे उसका मत उसके अनुयायियों को प्रभावित कर सके। सभा की कार्यवाही का संचालन वह इस ढंग से करता है कि उसकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। अलबत्ता कई बुद्धिमान स्पीकर विरोधी दल को भी समुचित आदर प्रदान करते हैं ताकि वे समस्त सदन का सम्मान प्राप्त कर सके, लेकिन अमेरिका में आमतौर पर इस तरह के स्पीकर देखने में नहीं आते। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की कानून निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय और राजनीतिक भूमिका के संबंध में स्पीकर निकोलस लॉगवर्थ ने एक बार कहा था, अपने दलीय मंच पर खड़े होकर जहां तक संभव हो उचित रीति से अपने दल के घोषित सिद्धांतों और नीतियों के अनुकूल विधि निर्माण में सहायता करना तथा इस प्रकार अपने दल की घोषित नीतियों के प्रतिकूल विधि निर्माण को रोकना स्पीकर का प्रथम कर्तव्य है। तीसरा, ब्रिटिश स्पीकर प्रायः अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है, परंतु अमेरिकी स्पीकर का चुनाव निर्विरोध नहीं होता। इंग्लैंड में यह परंपरा कायम हो गई है कि आम चुनाव में विरोधी दल स्पीकर के मुकाबले किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कॉमन सभा के लिए उसका निर्विरोध चुनाव होता है, परंतु अमेरिकी स्पीकर को कने चुनावी संघर्ष से गुजरना पड़ता है, इसलिए वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की अवहेलना नहीं कर सकता। उसे लगातार अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करनी पड़ती है और उनके दूरदर्द में शामिल होना पड़ता है। चौथा, ब्रिटेन में स्पीकर का बार बार इसी पद के लिए चुनाव होता रहता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं। इंग्लैंड में स्पीकर प्रायः सर्वसम्मति से चुना जाता है। जब तक कोई व्यक्ति कॉमन सभा का सदस्य बना रहता है और इस पद का इच्छुक रहता है, तब तक उसे बराबर अपने पद पर बना रहने दिया जाता है। कहावत है, जो एक बार स्पीकर बन जाता है वह सदैव इस पद पर कायम रहता है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। 1914 से लेकर 1962 तक इंग्लैंड में केवल 4 स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ा गया। शेष सभी मौकों पर सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हुआ। कई बार ऐसा देखने में आया कि सदन में आज जिस दल का बहुमत था, अगले चुनाव में उस दल का बहुमत समाप्त हो गया, परंतु स्पीकर वही व्यक्ति बना रहा जो पहले सदन का भी स्पीकर था। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां स्पीकर का चुनावी हलचल के साथ संबंध होता है। दोनों बड़े दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। पांचवा, ब्रिटिश स्पीकर धन विधेयक प्रमाणित कृत करता है, अमेरिकी स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 1911 में संसदीय अधिनियम के तहत ब्रिटिश स्पीकर का यह कर्तव्य है कि जब कोई धन विधेयक लॉर्ड सभा या सम्राट के पास भेजा जाए तो यह प्रमाणित करे कि यह विधेयक एक धन विधेयक है। अमेरिकी स्पीकर को इस प्रकार का कोई दायित्व एवं अधिकार प्राप्त नहीं है। छठा, ब्रिटिश सरकार के समादेश अंतिम होते हैं, पर अमेरिकी स्पीकर के समादेशों के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। अमेरिकी स्पीकर को सदन के नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है। नियमों की व्याख्या के संबंधित उसका कोई भी समादेश अंतिम नहीं माना जाता। यदि सदन उस निर्णय से सहमत न हो तो वह बहुमत से उसे ठुकरा सकता है। इसके विरुद्ध ब्रिटिश स्पीकर के समादेश अंतिम आदेश समझे जाते हैं, उस सदन उसे नामंजूर नहीं कर सकता। इन दोनों पदाधिकारियों के अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है, लोक सदन का स्पीकर केवल नियमों का उल्लेख करता है और उन्हें निष्पक्षता से लागू करता है, जबकि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपनी इच्छा से नियमों का पुनर्निर्माण करता है और सदन की समस्त कार्यवाही का निर्धारण में भी भाग लेता है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा का स्पीकर का पद और व्यक्तित्व तो दलिया होता है, लोक सदन के स्पीकर का पद निर्दलीय है। इसी तथ्य ने इस भेद को जन्म दिया है कि ब्रिटेन में स्पीकर का पद बहुत अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान का समझा जाता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को इसकी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नहीं है। लोक सदन के स्पीकर का पद प्रतिष्ठा और गौरव का पद है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद लोक सदन की तुलना में अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति लेकिन कम प्रतिष्ठा का पद है। ब्रिटिश स्पीकर निर्दलीयता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अमेरिकी स्पीकर दल के प्रति गहरी निष्ठा और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। अमेरिकी स्पीकर प्रतिनिधि सभा को दलीय नेतृत्व प्रदान करता है। प्रतिनिधि सभा की शक्तियां। विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित है, किंतु इनके अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य कार्य किए जाते हैं जो निम्न हैं। पहला, विधायी शक्तियां। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं, किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माता कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को सर्वोपरि स्थान देना चाहते थे, किंतु कालांतर में कानून निर्माण के क्षेत्र में भी सीनेट ने प्रतिनिधि सभा के समकक्ष ही और व्यवहार में कभी कभी अधिक शक्तिशाली स्थिति प्राप्त कर ली है। दूसरा, संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्तावित पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। तीसरा, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को दो शक्तियां प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी अस्थायी और विशिष्ट समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जाँच कर सकती है। चौथा, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। पांचवा, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है। छठा, अन्य शक्तियां। प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यपालिका के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और उसके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन दो तिहाई बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अमेरिका के व्यवस्थापिका की रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार द्वारा, पुखराज जैन की पुस्तक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से की गई है।